Shanti. Good morning. आज की वाणी हमने चार बार पढ़ी है. बाबा ने आज बहुत स्पष्ट शब्दों में क्रोध क्या है उसके ऊपर बताया है. मैं कहूंगी कि ये ऐसी मुरली है कि खुद के लिए एक आईना बन जाता है. मुझे याद है बहुत साल पहले जब एक छोटा सा ग्रुप यूथ कोऑर्डिनेटर्स का बड़ी दादी के साथ बैठे थे, तो किसी ने बड़ी दादी को ये प्रश्न पूछा था कि बड़ी दादी, सरेंडर की मीनिंग क्या है. हम तो हिंदी में कहते हैं समर्पण, लेकिन वो इंग्लिश में पूछा था सरेंडर माने क्या. तो बड़ी दादी ने बहुत अच्छा जवाब दिया. कहती है, सरेंडर माना युद्ध का मैदान को छोड़ना. तो आज जैसे मैंने बाबा की वाणी पढ़ी तो वो बात याद आई. बाबा ने आज अंतर्मुखता पर काफी अंडरलाइन किया है, क्योंकि यही है शांत चित्त बनने की विधि. मुझे याद है एक बार एक दादी जानकी के साथ में चिट चैट, तो कोई ऐसी थी जिसने दादी को कैसे हम गुस्से को कैसे इसके ऊपर विजय पाए. तो दादी ने बोला, कैसे कैसे नहीं बोलो, बंधन में ही रह जाएंगे, लेकिन गुस्सा आता है. बहुत कंपैशनेट रूप से दादी ने बताया, गुस्सा आता है. ठीक है, आता है. जैसे कोई आग लगी होती है घर में, तो आग आई है, आग आई. जो फायरमैन होता है वो ऐसे नहीं बोलते हैं, आग आई क्या करे. वो सीधा आकर के आग को बुझाते हैं. और दूसरा, आग आने का कारण क्या है वो जांच करते हैं. तो ये हमारा काम है. आज बाबा हमको रिक्वेस्ट कर रहा है कि जांच करो. और बहुत सारी बातें निकाली है क्रोध के कनेक्शन में, क्योंकि जैसे मोह अहंकार दोनों बेस्ट फ्रेंड है, क्रोध और काम दोनों बेस्ट फ्रेंड है. और मुझे वो चिटचैट याद है क्योंकि दादी ने एक बहुत स्ट्रांग सेंटेंस बोला था उसमें, कि जब भी हम गुस्सा करते हैं कोई भी बात का, तो समझो हम कोई ना कोई इच्छाओं से गुलाम है. और काम ऐसी चीज है, दृष्टि वृत्ति अच्छी नहीं होती है तो गुस्सा आता है. और काम अपने आप को, खुद को मैं अपनी शत्रु बनती हूं, और क्रोध औरों को शत्रु बना देती हूं. क्रोध में फिर औरों को दुश्मन बना देती हूं. तो दादी ने फिर चार बातें अंडरलाइन की थी उसमें, कि देखो जब अच्छी चीज होती है खुद के पास तो बुरी चीज आती नहीं है, बुरे में इंटरेस्ट ही नहीं होता है. अच्छी चीज माना क्या, शांति की शक्ति जो धैर्यता लाती है. और हमको पता है जब हम अधैर्य इम्पेशेंट बनते हैं, जल्दीबाजी कुछ चीज के करते हैं, तो गुस्सा जल्दी आ जाता है. क्योंकि गुस्सा हमारे संस्कार में भी है, छोटे को गुस्सा होता है, बड़े को भी गुस्सा होता है. फिर जब प्रेम की शक्ति नहीं है तो क्या होता है, समझने की शक्ति नहीं है. फिर मन में कंप्लेंट रहती है, अरे ये मुझे समझता ही नहीं है, मेरी बात को ही नहीं समझता है. तो फिर उसी हिसाब से इरिटेशन, फिर वो नाराजगी होती है कभी कभी, नहीं किसी का स्वभाव संस्कार देख करके नाराजगी आती है, फिर संतुष्टता, बाबा जितना दे रहा है फिर भी असंतुष्टता होती है तब गुस्सा होता है, या देखा देखी भी होती है ना कभी कभी, इसका देखा आवेश आता है, इसको कितना दिया है इसका क्या है, बाबा को याद करके अपना कर्म श्रेष्ठ बनाना। और फिर लास्ट आती है सहनशीलता, सहन शक्ति, छोटी छोटी बातों में अपसेट नहीं होना। तो आज बाबा ने कई ऐसी बातें अंडरलाइन की है, एक तरफ है काम, दूसरा तरफ है लोभ, इच्छाओं कई न कई इच्छा के गुलाम बने हैं, इसीलिए क्रोध या गुस्सा आता है। तो जांच करना बहुत जरूरी है। और फिर किसी ने दादी को पूछा कि दादी आपको जब भी छोटे मोटे रूप से गुस्सा आता है तो आप क्या करते हो, विदेशी लोग तो सीधा पूछते हैं ना तो मजा आता है, और दादी भी सीधा जब सवाल कहते हैं, मैं अपने आप को शांत रखती हूं, मैं बोलती नहीं हूं कुछ मुख से, और धैर्य होकर के मैं जांच करती हूं। तो खुद के साथ भी बहुत पेशेंस चाहिए इस बात में, नहीं? खुद के साथ क्रिटिकल नहीं बनना चाहिए। तो ये ऐसी वाणी है आज की, मैं समझती हूं सभी के लिए, हमारे लिए तो बहुत एक वंडरफुल आईना था, तो मैं समझती हूं सभी के लिए दिल छूने वाली धारणा युक्त मुरली है। जो हम इस मुरली को धारण कर ले तो सच में क्रोध मुक्त बन सकते। तो आज मीठे बाबा की वाणी 28 जून 2024 और बाबा बोले, मीठे बच्चे अंतर्मुखी बनो, अर्थात चुप रहो, मुख से कुछ भी बोलो नहीं, हर कार्य शांति से करो, कभी भी अशांति नहीं फैलाओ। अंतर्मुखी बनो अर्थात चुप रहो, मुख से कुछ भी बोलो नहीं, हर कार्य शांति से करो, कभी भी अशांति नहीं फैलाओ। प्रश्न, तुम बच्चों को कंगाल बनाने वाला सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? उत्तर, क्रोध। कंगाल बनाने वाले सबसे बड़ा दुश्मन है क्रोध। कहा जाता है ना, जहां क्रोध है वहां पानी के मटके भी सूख जाते हैं। भारत का मटका जो हीरे जवारों से भरा हुआ था वह इस भूत के कारण खाली हो गया है। इन भूतों ने ही तुमको कंगाल बनाया है। क्रोधी मनुष्य खुद भी तपता है और दूसरों को भी तपाता है, इसीलिए अब इस भूत को अंतर्मुखी बन निकालो। दादी हमको कहती थी, सब भूते एक कारण से आती है अंदर, बाहर मुक्ता और परदर्शन, परदोष और परचिंतन, ये तीन आदत से भूतों की प्रवेशता होती है। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं, मीठे बच्चे अंतर्मुखी बनो। अंतर्मुखता अर्थात कुछ भी बोलो नहीं, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। यह बाप बैठ शिक्षा देते हैं बच्चों को, और कुछ भी बोलने का इसमें है नहीं, सिर्फ समझानी दी जाती है। गृहस्थ व्यवहार में ऐसे रहना है, यह है मन मनाभव। ये सारी बातें बुद्धि की है, बुद्धि चुप रहती है, अंतर्मुखी रहती है, तब ये मुंह साइलेंट रहता है, ज्यादा बोलने का विस्तार नहीं होता है। ये कभी कभी कोई कहता है, जस्टिफिकेशन में आ जाता है, अरे मैंने ये बोला ना, वो ये भी एक सूक्ष्म, मियां मिठू बनना एक सूक्ष्म क्रोध है। तो और कुछ भी बोलने का इसमें है नहीं, सिर्फ समझानी दी जाती है। गृहस्थ व्यवहार में ऐसे रहना है, यह है मन मनाभव। मुझे याद करो, यह है पहली मुख्य पॉइंट। तुम बच्चों को घर में क्रोध भी नहीं करना चाहिए। क्रोध ऐसा है जो पानी का मटका भी सुखा दे। क्रोधी मनुष्य अशांति फैलाता है, इसीलिए गृहस्थ व्यवहार में रहते शांति में रहना है। भोजन खाकर अपने धंधे अथवा ऑफिस आदि में चले जाना, वहां भी साइलेंस में रहना अच्छा है। सब कहते हैं हमको शांति चाहिए, यह तो बच्चों को बताया है शांति का सागर एक बाप ही है। बाप ही डायरेक्शन देते हैं, मुझे याद करो। एक बारी एक बहन थी, तो उसने पूछा, मैं शांति में रहना चाहती हूं, लेकिन मैं ऑफिस में जाती हूं तो सामने वाला व्यक्ति बहुत बोलता है, मैं बहुत कोशिश करूं मैं शांति में रहूं, तो क्या करूं? तो बाबा जवाब दे रहा है, मन मनाभव हो करके एक कान से सुनो दूसरे कान से निकालो, लेकिन बहुत एंगेज नहीं करो। कभी कभी अंदर से डर होता है, अरे चाहना होती है, अरे इतना बोलता है, जजमेंट होता है, तो वो और बोलने लगेगा और वो टेस्ट पेपर सामने आएगा। जब मन मना भव रहते हैं ना, तो उस आत्मा को भी वो वाइब्रेशन मिलते हैं, थोड़े समय के बाद वो ही चुप हो जाएगा। तो सब कहते हैं हमको शांति चाहिए, यह तो बच्चों को बताया है शांति का सागर एक बाप ही है। बाप ही डायरेक्शन देते हैं, मुझे याद करो। इसमें बोलना कुछ भी नहीं है, अंतर्मुख रहना है। ऑफिस आदि में अपना काम भी करना है तो इसमें जास्ती बोलना नहीं होता। बिल्कुल क्रोध का ऑपोजिट गुण क्या है? क्रोध भूत है, और उसके बदले में कौन सा गुण धारण करना है? कौन सा गुण धारण करना है? शांति, और दूसरा बिल्कुल मीठा बनना है। कोई को दुख नहीं देना चाहिए। लड़ाई आदि करना यह सब क्रोध है। सबसे बड़ा दुश्मन है काम, इच्छा, एक्सपेक्टेशन रखते हैं, सबसे बड़ा दुश्मन ये है। फिर दूसरा नंबर है क्रोध। एक दूसरे को दुख पहुंचाते हैं, क्रोध से कितनी लड़ाई हो जाती है। बच्चे जानते हैं सत्युग में लड़ाई होती ही नहीं, यह है रावण पने की निशानी। क्रोध वाले को भी आसुरी संप्रदाय कहा जाता है, भूत की प्रवेशता है ना। इसमें बोलना कुछ भी नहीं है क्योंकि इन मनुष्यों को तो ज्ञान है नहीं। बाहर वालों के साथ क्रोध तो वो तो करेंगे, ज्ञान है नहीं तो किसी के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, बोलना ज्यादा नहीं है, मन मना भाव रख करके वाइब्रेशन देना है। तो बाबा कहते हैं इसमें बोलना कुछ भी नहीं है क्योंकि इन मनुष्यों को तो ज्ञान है नहीं, वह तो गुस्सा करना माना नॉनसेंस। जो स्यानी आत्मा है वो शांति से, सच्चाई से, धैर्यता से काम लेता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं क्रोध वाले से, क्रोध वाले के साथ क्रोध करने से लड़ाई लग जाती है। बाप समझाते हैं यह बड़ा कड़ा भूत है, इसको युक्ति से भगाना चाहिए, मुख से कोई कड़वे शब्द नहीं निकालना चाहिए, यह बहुत नुकसानकार है, विनाश भी। किसके कारण होता है विनाश? भी क्रोध से ही होता है ना। घर घर में जहां क्रोध होता है वहां अशांति बहुत रहती है। क्रोध किया तो तुम बाप का नाम बदनाम करेंगे। इन भूतों को भगाना है, एक बार भगाया तो फिर आधा कल्प के लिए ये भूत होंगे ही नहीं। यह पांच विकार अभी फुल फोर्स में है। ऐसे समय ही बाप आते हैं जबकि विकार फुल फोर्स में है। या आंखें बड़ी क्रिमिनल है, मुख भी क्रिमिनल है, जोर से बोलने से मनुष्य तप जाता है और घर को भी तपा देती है। क्रोध तीन प्रकार की एक्सप्रेशन आती है क्रोध की, एक तो मन में, मन के अंदर, दूसरा है आंखों से और तीसरा है शब्दों द्वारा। तो मन में जितना वहां तक आप रोक सकते हैं रोक दो, क्योंकि जब बोल तक पहुंचता है ना तो फिर दुश्मनी पैदा होती है संबंध में। तो जोर से बोलने से मनुष्य तप जाता है और घर को भी तपा देते हैं। काम और क्रोध ये दोनों बड़े दुश्मन हैं। क्रोध वाले याद कर न सके, याद करने वाले सदैव शांति में रहेंगे। अपने दिल से पूछना है हमारे में भूत तो नहीं है? मोह का भी लोभ का भी भूत होता है, लोभ का भूत भी कम नहीं। ये चाहो ये चाहो ये चाहो, इच्छा इच्छा, ये सब भूत है क्योंकि रावण सेना है। रावण की सेना भूतों की सेना। बाप बच्चों को याद की यात्रा सिखलाते हैं परंतु बच्चे इसमें मूंझते बहुत है, समझते नहीं है क्योंकि भक्ति बहुत की है ना। भक्ति है देह अभिमान, आधा कल्प देह अभिमान रहा है ना। बाहर मुक्ता होने के कारण अपने को आत्मा समझ नहीं सकते, ये भक्ति का फल है बाहर मुक्ता। तो बाहर मुक्ता होने के कारण अपने को आत्मा समझ नहीं सकते। बाप जोर बहुत लगाते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, परंतु आता ही नहीं। और सब बातें मानते भी हैं फिर कह देते याद कैसे करे, कोई चीज तो दिखाई नहीं पड़ती। उनको समझाया जाता है, तुम अपने को आत्मा समझते हो, यह भी जानते हो वह बेहद का बाप है, मुख से शिव शिव बोलना नहीं है, अंदर में जानते हो ना मैं आत्मा हूं। मनुष्य शांति मांगते हैं, शांति का सागर वह परमात्मा ही है, जरूर वर्षा भी वही देंगे। अब बाप समझाते हैं, मेरे को याद करो तो क्या हो जाएगा, मेरे को याद करो तो शांति हो जाएगी। ये सच्ची सच्ची दिल की याद की ये निशानी है, बिल्कुल शांति का एक सुकून मिलता है, अंदर बुद्धि बिल्कुल समर्पण हो जाती है, सरेंडर हो जाती है। तो मेरे को याद करो बाबा कहते हैं तो शांति हो जाएगी, और जन्म जन्मांतर के विकर्म भी विनाश होंगे। बाकी कोई चीज है नहीं, कोई इतना बड़ा लिंग तो नहीं है, आत्मा छोटी है, बाप भी छोटा है, याद तो सभी करते हैं, हे भगवान हे गॉड, ये कौन कहता है, आत्मा कहती है, अपने बाप को याद करते हैं। तो बाप बच्चों को कहते हैं मन मना भव, मीठे मीठे बच्चों अंतर्मुख होकर रहो, यह जो कुछ देखते हो ना वो खत्म हो जाना है, बाकी आत्मा शांति में रहती है। आत्मा को शांति धाम ही जाना है, जब तक आत्मा पवित्र नहीं बनी है तब तक शांति धाम जा नहीं सकती। ऋषि मुनि आदि सब कहते हैं शांति कैसे मिले, बाप को सहज युक्ति बताते हैं, बाप तो सहज युक्ति बताते हैं, परंतु बच्चों को, बच्चों में बहुत है जो शांति में नहीं रहते हैं। बाप क्लियर समझानी देते हैं, लेकिन जो भक्ति की आदतें हैं ना, बाहर मुखी बनना, बुद्धि इधर उधर भटकती है, तो हम, हमारी समझ की शक्ति बढ़ती नहीं है। तो बाबा कहते हैं परंतु बच्चों में बहुत है जो शांति में नहीं रहते हैं, बाबा जानते हैं, क्या जानते हैं, घरों में रहते हैं बिल्कुल शांत नहीं रहते हैं, सेंटर्स पर थोड़ा टाइम जाते हैं, अंदर में शांत हो बाप को याद करे वह नहीं है, सारा दिन घर में हंगामा करते रहते हैं, तो सेंटर पर आने से भी शांति में नहीं रह सकते हैं। कोई की देह से प्यार हो गया तो उनके मन को कभी शांति हो न सके, इसीलिए काम क्रोध बेस्ट फ्रेंड। ये बहुत अंडरलाइन करने की बात है, कोई की देह से प्यार हो गया तो इनके मन को कभी शांति हो न सके। क्यों घर गृहस्थ में शांति है, एक्सपेक्टेशन बहुत है, तो मन शांत कैसे रहेगा। तो फिर बाबा बोलते हैं बस जिसकी, जिसको मन में रखा है बस उसकी ही याद आती रहेगी। बाप समझाते हैं मनुष्यों में है पांच भूत, कहते हैं ना इसमें भूत की प्रवेशता है, इन भूतों ने ही तुमको कंगाल बनाया है। वह तो करके एक भूत होता है, वह भी कभी प्रवेश कर लेता है। बाप कहते हैं यह पांच भूतों की हर एक में प्रवेशता है, हर एक में। ऐसे नहीं समझो मेरे पास एक ही है, एक है तो और चारों भी साथ में है, दोनों में आपस में फ्रेंडशिप बहुत होती है। बाप कहते हैं ये पांच भूतों की हर एक में प्रवेशता है, इन भूतों को भगाने के लिए ही पुकारते हैं, बाबा आकर हमको शांति दो, इन भूतों को भगाने की युक्ति बताओ। यह भूत तो सभी में है, यह रावण राज्य है ना, सबसे कड़ा भूत है काम क्रोध। बाप आकर भूतों को भगाते हैं तो उनकी एवज में कुछ मिलना तो चाहिए ना। वे भूत प्रेत भगाते हैं, मिलना कुछ भी नहीं, मिलता तो कुछ भी नहीं। ये तो बच्चे जानते हैं, बाप आते हैं सारे विश्व से भूतों को भगाने। देखो एक बाबा ही याद, वो ही शब्द याद रखो ना, वो आग बुझ जाती है। हमारा ये अनुभव है सच में, बाबा शब्द भी याद रख करके भूत को भगा सकते हैं। अभी सारे विश्व में सब में भूतों की प्रवेशता है, देवताओं में कोई भूत नहीं होता, न देह अभिमान होता, न देह अभिमान का, न काम क्रोध लोभ मोह, कुछ नहीं होता। लोभ का भूत भी कम नहीं है। क्या होता है जब लोभ का भूत होता है, मन में कौन सा संकल्प उठता है? गोलगप्पे खाओ, गुलाब जामुन खाओ, कुछ खाओ, मन में वो इच्छा पैदा होती है ना। तो लोभ का भूत भी कम नहीं है, या अंडा खाओ, वह खाओ, वो खाओ, बहुतों में भूत रहते हैं। अपने दिल से समझते हैं बरोबर हमारे में काम का भूत है, क्रोध का भूत है, तो इन भूतों को निकालने के लिए बाप कितना माथा मारते हैं। देह अभिमान में आने से दिल होती है, ये दूसरी बात, ये दूसरा कारण भूतों का। देह अभिमान में आने से दिल होती है भाकी पहनो, देह अभिमान में अट्रैक्शन शुरू होता है, ये भी कारण है क्रोध का। देह अभिमान में आने से दिल होती है भाकी पहनू, यह करूं, फिर कमाई सारी चट हो जाती है। कमाई चट होने से असंतुष्टता पैदा होती है, असंतुष्टता होती है तो गुस्सा आता है। देखो ये सारी बातें कनेक्टेड है। तो फिर बाबा कहते हैं क्रोध वाले का भी यह हाल है, फिर कमाई सारी चट हो जाती है और क्रोध वाले का भी यह हाल है। क्रोध में आकर बाप बच्चों को क्या करेंगे, संसार में तो बहुत बुरी हालत है जब क्रोधी बनते हैं, क्रोध में आकर के बाप बच्चों को मार देते हैं, बच्चे बाप को मार देते हैं, स्त्री पति को मार डालती है। जेल में जाकर तुम देखो कैसे कैसे केस होते हैं, इन भूतों की प्रवेशता के कारण क्या हाल भारत का हो गया है। भारत का जो बड़ा मटका था, जो सोने हीरो आदि से भरा हुआ था, वह अब खाली हो गया है। क्रोध के कारण कहते हैं ना, पानी का मटका भी सूख जाता है, तो यह भारत का भी ऐसा हाल हो गया है। यह भी कोई नहीं जानते हैं, बाप ही आते हैं भूतों को निकालने के लिए, जो और कोई भी मनुष्य मात्र नहीं निकाल सकते। ये पांच भूत बड़े जबरदस्त है। आधा कल्प तो इनकी प्रवेशता रही है, इस समय तो बात मत पूछो,
भल कोई पवित्र रहते हैं, परंतु जन्म तो विकार से ही मिलता है ना। भूत तो है ना, पांच भूतों ने भारत को बिल्कुल कंगाल बना दिया है। भारत कैसे बना हुआ है, जो बाप बैठ समझाते हैं, भारत कंगाल बना है जो बाहर से कर्जा लेते रहते हैं। भारत के लिए ही बाप समझाते हैं। अभी तुम बच्चों को इस पढ़ाई से कितना धन मिलता है, यह अविनाशी पढ़ाई है जो अविनाशी बाप पढ़ाते हैं। भक्ति मार्ग में कितनी सामग्री है, बाबा अभी साकार बाबा अपनी बात करते हैं। बाबा छोटेपन से गीता पढ़ते थे और नारायण की पूजा करते थे, समझ तो कुछ भी नहीं थी, भावना में करते थे सब बातें लेकिन समझ कुछ भी नहीं थी। मैं आत्मा हूं, वह हमारा बाप है, यह भी समझ नहीं थी। इसीलिए पूछते हैं कैसे याद करूं। अरे तुम तो भक्ति मार्ग में याद करते आए हो, हे भगवान आओ लिबरेट करो, हमारा गाइड बनो। गाइड मिलता है मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए। बाप इस पुरानी दुनिया से नफरत दिलाते हैं। काफी स्ट्रांग शब्द है, पुरानी दुनिया से, पुरानी चमड़ी से नफरत। अब देखो ना ये चमड़ी, इतनी पतली चमड़ी है, बहुत पतली है, एक सेंटीमीटर से भी कम है, और फिर भी सारी दुनिया में देह भान अभिमान इस चमड़ी, चमड़ी के भी नीचे सब एक है, फ्लैश बोन सब। तो बाबा कहते हैं बाप इस पुरानी दुनिया से नफरत दिलाते हैं, इस समय सबकी आत्माएं काली है तो इनको गोरा शरीर कैसे मिलेगा। भल करके चमड़ी कितनी भी सफेद है परंतु आत्मा तो काली है ना। जो सफेद खूबसूरत शरीर वाले हैं उनको अपना नशा कितना रहता है, अभिमान होता है ना, देखा इनका नशा कितना रहता है। मनुष्यों को तो यह पता ही नहीं पड़ता है कि आत्मा गोरी कैसे बनती है, इसीलिए उनको कहा जाता है नास्तक। जो अपने बाप रचयिता और रचना को नहीं जानते हैं वह है नास्तक, जो जानते हैं वह हुए आस्तिक। बाप कितना अच्छी रीति बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं, हर एक अपने दिल से पूछे। अभी ये जांच करनी है दिल से, हर एक अपने दिल से पूछे कहां तक हमारे में सफाई है। सफाई के आधार से शांति बैठती है, जमा होती है। तो कहां तक हमारे में सफाई है, कहां तक हम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करता हूं। याद के बल से ही रावण पर विजय पानी है, इसमें शरीर के बलवान होने की बात ही नहीं है। इस समय सबसे बलवान कौन सा देश है, अमेरिका है, क्योंकि उनके पास धन दौलत बारूद आदि बहुत है। तो बल हो गया जिस्मानी मारने लिए, बुद्धि में है हम विजय पाए, जिस्मानी बल से विजय पाए, ये उनका लक्ष्य ही रहता है। तुम्हारा तो है रूहानी बल, तुम विजय पाते हो रावण पर शांति की शक्ति से, प्रेम की शक्ति से, जिससे तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। तुम्हारे ऊपर कोई जीत पा नहीं सकता, आधा कल्प के लिए कोई छीन नहीं सकता और कोई को बाप से वर्षा मिलता नहीं। तुम क्या बनते हो, थोड़ा विचार तो करो। बाप को तो बहुत प्यार से याद करना है और स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। वह समझते हैं स्वदर्शन चक्र से विष्णु ने सबका सिर काटा है, लेकिन इसमें हिंसा की तो बात ही नहीं है। ये ना कभी कभी हम समझते हैं, ये जो बाप ये बात उठाते हैं ना, हमारी रूहानी बल से विजय प्राप्त है और उसके पहले सफाई की बात। हम कभी कोई सरकमस्टांस या व्यक्ति से हार नहीं खाते हैं, हम हमारी इच्छाओं से हार खाते। मेन ये है, इसको रियलाइज करके बाबा से जो भी प्राप्ति लेनी है वो ले लेना चाहिए। तो बाबा बोले, तो मीठे मीठे बच्चों को बाप कहते हैं। मीठे बच्चे तुम क्या थे, अब अपनी हालत तो देखो। भल तुम कितनी भी भक्ति आदि करते थे परंतु भूत निकाल नहीं सके। अभी अंतर्मुख होकर देखो, हमारे में कोई भूत तो नहीं है। कोई से दिल लगाई, भाकी पहनी तो समझो क्या होगा, चट खाते में गया। उनका तो मुंह देखना भी अच्छा नहीं लगता, वह तो जैसे अच्युत है, स्वच्छ नहीं है। अंदर में दिल खाती है, बरोबर मैं अच्युत हूं। बाप कहते हैं देह सहित सब कुछ भूलो, अपने को आत्मा समझो। ये है काम, काम खुद का अंदर से अपने आप को अपना शत्रु बना देता है, क्योंकि विवेक खाता है ना, खुद के लिए नफरत पैदा। मैं अपने को आत्मा समझो, यह अवस्था रखने से ही तुम देवता बनेंगे, तो कोई भी भूत नहीं आना चाहिए। समझाते रहते हैं अपनी जांच करो, बहुतों में क्रोध है, गाली देने बिगर रहते नहीं है, फिर लड़ाई चल पड़ती है। क्रोध तो बहुत खराब है, भूतों को भगाकर एकदम क्लियर होना है, क्लीन और क्लियर। शरीर याद भी ना आए तब ऊंच पद पा सकते हैं, इसीलिए 8 रत्न गाए जाते हैं। तुमको ज्ञान रत्न मिलते हैं रत्न बनने के लिए। कहते हैं भारत में 33 करोड़ देवताएं थे, परंतु उनमें भी 8 रत्न पास विथ ऑनर होंगे, माना कंप्लीट निर्विकारी अवस्था। उनको ही क्या मिलेगा, प्राइज मिलेगी। जैसे स्कॉलरशिप मिलती है ना, तुम जानते हो मंजिल बहुत भारी है, चलते चलते गिर पड़ते हैं, भूत की प्रवेशता हो जाती है, वहां विकार होता ही नहीं। तुम बच्चों की बुद्धि में सारे ड्रामा का चक्र फिरना चाहिए। तुम जानते हो 5000 वर्ष में कितने मास, कितने घंटे, कितने सेकंड होते हैं, कोई हिसाब निकाले तो निकाल सकते हैं। फिर यह जो झाड़ है उसमें भी यह लिख देंगे कि कल्प में इतने वर्ष, इतने मास, इतने दिन, इतने घंटे, इतने सेकंड होते हैं। मनुष्य कहेंगे यह तो बिल्कुल एक्यूरेट बताते हैं, 84 जन्मों का हिसाब बताते हैं, तो कल्प की आयु क्यों नहीं बताएंगे। बच्चों को मुख्य बात तो बताई है कि कैसे भी करके भूतों को तो भगाना है, इन भूतों ने तुम्हारी पूरी सत्यानाश कर दी है। सब मनुष्य मात्र में भूत जरूर है ही भ्रष्टाचार की पैदाइश, वहां भ्रष्टाचार होती नहीं। रावण ही नहीं है, रावण को भी कोई समझते नहीं है। तुम रावण पर जीत पाते हो, फिर रावण होता ही, फिर रावण होगा ही नहीं। अभी पुरुषार्थ करो। कौन सा पुरुषार्थ? दादी कहती थी सवेरे उठ करके वो दवाई खानी होती है ना, गोली खानी होती है ना, 3 गोली खा लो, पेशेंस, पीस और लव, बस ये 3 गोली खाने से सारा दिन बहुत अच्छा बीतता है। इसलिए बाबा कहते हैं अभी पुरुषार्थ करो। बाप आए हैं तो बाप का वर्षा जरूर मिलना चाहिए। तुम कितना बारी देवता बनते हो, कितना बारी असुर बनते हो, उनका हिसाब नहीं निकाल सकते। अनगिनत बार बने होंगे। अच्छा बच्चे, शांति में रहो तो कभी क्रोध नहीं आएगा। बाप जो शिक्षा देते हैं उस पर अमल करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, अपने आप से पूछो। अपने आप से पूछना है, हमारे में कोई भी भूत तो नहीं है, आंखें क्रिमिनल तो नहीं होती है, जोर से बोलने व अशांति फैलाने का संस्कार तो नहीं है, लोभ मोह का विकार सताता तो नहीं है। दूसरा, किसी भी देहधारी से दिल नहीं लगाना है। 2 प्रकार का दिल लगता है, एक अट्रैक्शन का और दूसरा नफरत का, घृणा। ये भी दिल लगाना, क्योंकि उस व्यक्ति के बारे में बार बार सोचते हैं। किसी भी देहधारी से दिल नहीं लगाना है। देह सहित सब कुछ भूल याद की यात्रा से स्वयं में रूहानी बल भरना है। एक बार भूतों को भगाकर आधा कल्प के लिए छुटकारा पाना है। वरदान प्राप्त करने वाले फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी भव। एक कदम की हिम्मत तो पदम कदमों की मदद। ड्रामा में इस विधान की विधि नुंधी हुई है। अगर यह विधि विधान में नहीं होती तो सभी विश्व के पहले राजा बन जाते। नंबर वार बनने का विधान इस विधि के कारण ही बनती है। तो जितना चाहे हिम्मत रखो और मदद लो। चाहे सरेंडर हो, चाहे प्रवृत्ति वाले हो, अधिकार समान है, लेकिन विधि से सिद्धि है। इस ईश्वरीय विधान को समझ अलबेलेपन की लीला को समाप्त करो तो फर्स्ट डिवीजन का अधिकार मिल जाएगा। स्लोगन, संकल्प के खजाने के प्रति इकोनॉमी के संकल्प के खजाने के प्रति इकोनॉमी के अवतार बनो। ओम शांति। और आज का कर्म योगी बनने का पॉइंट 28 नंबर, भल यह पुराना शरीर है लेकिन बलिहारी इस अंतिम शरीर की है, जो श्रेष्ठ आत्मा उसके आधार से अलौकिक अनुभव करती है। तो आत्मा और शरीर कंबाइंड है, पुराने शरीर के भान में नहीं आना है, लेकिन मालिक बन इस द्वारा कार्य कराने हैं। इसीलिए आत्म अभिमानी बन, कर्म योगी बन, कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराते चलो। कर्तापन के भान से मैं करता हूं, मैंने किया, यह मैंपन से मुक्त रहे और कर्म करना ही कर्म योगी स्टेज है। ओम शांति शांति शांति। चलो अंतर्मुखी अवस्था में बाप शांति का सागर 2 मिनट याद।